جی جناب علی، بسم اللہ کریں. ہیلو،
السلام علیکم.
جی وعلیکم السلام.
جی سر، سر میرا سوال ہے.
ارشاد.
غیر انسانی ذہن کی تین سطحیں ہیں، ہر سطح کے دو دو رخ ہیں. ان دو رخوں کو ہم مرکب روشنی، مفرد روشنی، مطلق روشنی.
جی، مرکب نور، مفرد نور اور مطلق نور، چھ سطح ہو گئی.
جی
جی، اصل میں یہ وہی روح کے تین درجے ہیں، روح انسانی، روح حیوانی، روح انسانی اور روح اعظم. دیکھیں، روح حیوانی کے دو درجے ہو گئے.
جی جی،
مطلب تین صفحے ہیں، تین ورق ہیں، ہر ورق تین ورق اوپر تلے پڑے ہیں. ٹھیک ہے، اب ٹیبل پہ تین ورق پڑے ہیں، سب سے نچلے ورق کا رخ ٹیبل کی طرف ہے، تو وہ ایک سطح ہے. اس ورق کا دوسرا صفحہ جو ہے وہ اس کے اوپر پڑے ہوئے ورق کے نچلی سطح پہ ہے. اس طرح یہ تین اوراق کی چھ سطحیں بن گئیں. تین اوراق، چھ سطحیں. اسی طرح روح کے تین درجے ہیں اور دو دو سطحیں ہیں. اب اس کی سب سے نچلی سطح جو ہے وہ مرکب روشنی ہے. سب سے نچلی سطح مرکب روشنی ہے، اس سے اوپر کی سطح مفرد روشنی ہے، اس سے اوپر کی سطح، یعنی کہ دو سطحیں ہو گئیں. پھر دوسری روح کا نچلا حصہ مطلق روشنی ہے، اور اوپر کا حصہ جو ہے وہ نور مرکب ہے. اب اس کے بعد تیسری سطح کا نچلا حصہ جو ہے وہ نور مفرد ہے، اور اوپر کا حصہ نور مطلق ہے. انہی کو چھ لطائف کہا گیا ہے. سب سے نچلا لطیفہ نفسی ہے، پھر قلبی ہے، پھر سری ہے، پھر روحی ہے، روحی ہے، پھر سری ہے، پھر خفی ہے، اور اوپر اخفا ہے. تو یہی چھ لطائف جو ہیں، ان کو ابا نے بتایا کہ یہ اصل میں روشنی کے مرکب ہونے کی، مفرد ہونے کی، مطلق ہونے کی، نور کے مرکب ہونے کی، نور کے مفرد ہونے کی، اور نور کے مطلق ہونے کی کیفیتوں کے نام ہیں.
جی سر،
یعنی وہی روح کے تین درجے اور چھ لطائف.
جی جی،
یعنی کہ یہ چھ لطائف اصل میں کیا ہیں؟ یہ بات ہم نے بڑی وضاحت سے عرض کی تھی کہ یہ چھ بناوٹیں ہیں.
بالکل سر.
یعنی وہمہ، خیال، تصور اور احساس. وہمہ جب خیال بنتا ہے تو ایک بناوٹ ہوئی، خیال تصور بنتا ہے یہ دوسری بناوٹ ہوئی، تصور احساس میں ڈھلا تو یہ تیسری بناوٹ ہوئی. جب یہ احساس واپس پلٹتا ہے اور تصور بنتا ہے دوبارہ، تو یہ چوتھی بناوٹ ہوئی. تصور خیال بنا، یہ پانچویں بناوٹ ہوئی. خیال واپس اطلاع میں ڈھل گیا تو یہ چھٹی بناوٹ ہوئی. ٹھیک ہو گیا. اسی کو سمجھانے کے مختلف زاویوں میں سے ایک زاویہ یہ جو آپ نے ابھی فرمایا کہ روشنی، مرکب روشنی، یعنی روشنی کا مرکب ہونا، جیسے کپڑا تانا اور بانا مل گیا.
جی جی سر. جی سر
جی، بس باقی
چیزیں. یہ مطلق، جی سر، یہ مطلق کو شکل جب دیا جائے، جیسے مفرد اور مرکب کو، وہ سمجھ میں آ رہا ہے اوپر نیچے. اور جیسے
اب مطلق کا مطلب ہے روئی، روئی کے ریشے جن سے دھاگا بنا. جب تانا اور سمجھ آ گیا کہ تانا جو ہے وہ سیدھے، لیکن تانا کس سے بنا؟ تاروں سے، روئی کے ریشوں سے بنا.
اچھا،
روئی کے ریشوں سے دھاگا بنا، اور جب اس کو آپ نے لمبے رخ پھیلایا تو وہ تانا کہلایا، یہ مفرد ہو گیا. جب اس کو تا ताने को बाना बना दिया, यानी कि उसको बुन दिया गया, तो वो मुरक्कब हो गया। खेल सारा रुई के रेशों का है, ठीक हो गया।
जी, जी, जी।
ये तीनों दर्जे समझ आ गए। इसी तरह नूर, नूर के भी तीन दर्जे हैं, नूरे मुतलक, नूरे मुफरद और नूरे मुरक्कब।
जी सर, थैंक यू सर। एक और सवाल है नजरी रंग नूर से, सवाल है गैर मुनकसिम हवास वो है जो अभी तकसीम होकर मुजाहिराती खदोखाल में मुंतकिल नहीं हुए। सर यहाँ पर ला उक्सिमु हाजर बलद, सर तो इसको तकसीम से कैसे रोकें?
असल में रोकना नहीं है, बात यह है कि हमने रोकना नहीं है। देखें, अगर हवास तकसीम नहीं होंगे तो आप चीजों को ना देख सकते हैं मादी जोन में, ना महसूस कर सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना छू सकते हैं, ना सूंघ सकते हैं, ना चख सकते हैं। ये सूंघना चखना जब अलहदा अलहदा होता है तो ये मुनकसिम हो गए, ठीक है। अब जब हम खाब के हवास में होते हैं, यानी जब हम सो रहे होते हैं, तो हम खाते भी हैं, पीते भी हैं, सूंघते भी हैं, चखते भी हैं, छूते भी हैं, चीजों का लम्स महसूस होता है, लेकिन वो सारे का सारा जिस्मानी आज़ा में तकसीम होके नहीं हो रहा होगा।
अच्छा।
वो सारा अमल जहन के एक नुक्ते में हो रहा होता है, जहन का वो नुक्ता जहाँ हवास गैर मुनकसिम है, अगर हम वहां पर रसाई रखें तो गोया हम ख्वाब के हवास में मुंतकिल हो गए। यानी हम अपने हिस्सियात का इस्तेमाल उस नुक्ते में बंद होके करना सीख लेते हैं।
असल में समझ में ये समझना ये था कि गैर मतवातिर लाशऊर दुनिया में दाखिल होने के लिए,
जी जी देखें अब इसी को गैर मतवातर कहा ना। देखें एक हमारा ये मादी जोन जो है ये मतवातर है, यानी इसमें टाइम यके बाद दीगरे एक एक सेकंड करके गुजर रहा है और तरतीब से गुजर रहा है। एक बज के एक मिनट एक सेकंड, एक बज के एक मिनट दो सेकंड, एक बज के एक मिनट तीन सेकंड, करते कराते वो एक मिनट एक बजकर दो मिनट हो जाते हैं। तो 60 लम्हात तरतीब से गुजर कर हम एक मिनट गुजारते हैं, ठीक हो गया।
जी सर।
लेकिन ख्वाब के हवास में हम इस तरतीब से आजाद हो जाते हैं, उसे गैर मतवातर कहा है।
जी सर, असल में ये था सर कि मैं इसको शायद सही से समझी नहीं कि जैसे ना ख्याल में अपने वो शामिल करना, तो मैं ये सवाल करना चाह रही थी कि इसको कैसे रोकें, इसके मतलब तरीका कार क्या है?
बस यही है कि आप इसकी देखें मश्क जब आप ये मुराकबे करते हैं तो असल में क्या करते हैं कि जो भी ख्याल आ रहा है उसे आने देते हैं, उसे आने देते हैं। जब ख्याल का फ्लो बन जाता है फिर आप उस ख्याल को असेस करते हैं, उसका तजजिया करते हैं, उसको नापते हैं, उसको तोलते हैं, और उन ख्यालों में से कौन सा ऐसा है जो आपका प्राइवेट है और कौन सा है जो दूसरों के साथ शेयर किया जा सकता है। ठीक हो गया।
सर एक सवाल और कर सकती हूँ?
जी जी फरमाइए।
जी बातें मेरे मुराद की में है, सफा नंबर 315। जिस तरह मुख्तलिफ इलाकों के लोगों की जुबान हर 200 मील के बाद बदल जाती है, इस तरह परिंदों के बोलियों में भी फर्क आ जाता है। तो सर जमीन एक है, आसमान मतलब जैसे बज़ाहिर देखा जाए
जी,
तो ये फर्क किस तरह वाक्य होता है और क्यों होता है?
चूंकि ये कम्युनिकेशन का दायरा है ना, अब देखें ना तकरीबन हर 200 मील के बाद जबान बदल जाती है। अब एक ही पश्तो है, पश्तो एक ही जबान है, लेकिन अफगानिस्तान में जिस तरह से बोली जाती है फिर अफगानिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में जिस तरह बोली जाती है, उसमें फर्क है या नहीं?
बिल्कुल है सर।
फिर फ्रंटियर में वजीरिस्तान की पश्तो और है, बन्नू की पश्तो और है, डेरा इस्माइल खान की पश्तो और है, पिशावर की पश्तो बिल्कुल डिफरेंट है, कुहाड़ की बिल्कुल डिफरेंट है।
ऐसा ही सर।
कहने का मतलब ये है कि ये इंसानों ने अपनी कम्युनिकेशन के लिए जो भी डिवाइस किया, ये अपनी अपनी हदूद में रहते हुए किया, ठीक है?
जी सर।
ये कानून सिर्फ यहाँ पश्तो या उर्दू पे नहीं है। अब कराची की उर्दू और है, लखनऊ की उर्दू और है, दक्कन की उर्दू और है, हैदराबाद दक्कन की उर्दू बिल्कुल डिफरेंट है। यही उर्दू लाहौर में बोली जाती है, यही उर्दू पेशावर में भी बोली जाती है, पूरे पाकिस्तान में बोली जाती है, लेकिन हर जगह पता चलता है लबो लहजे के फर्क से, क्योंकि वो हर इलाके का अपना एक मिजाज होता है। ठीक हो क्या?
क्योंकि सर, जी सर, क्योंकि आदम और हवा यानी एक ही लैंग्वेज के, फिर उनके बच्चे भी, फिर किस तरह ये जहन में
ये
आता है
जरा
कि
बड़ी
सर।
बात है, सुन लीजिए, ये मगालता दूर कर लीजिए। अब ऑस्ट्रेलिया एक जजीरा है, वहां पे आदम कहाँ से आ गया? अमेरिका भी एक बड़ा सा जजीरा है, उस पे कहाँ से आ गया? अब श्रीलंका बेसिकली एक छोटा सा जजीरा है जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ आदम आया, आदम यहाँ एडम्स पीक पे उतरे। हवा के बारे में कहा जाता है कि वो जद्दा में थी। अब उस वक्त तो कश्ती ईजाद नहीं हुई थी, तो ये कैसे मिले, सवाल है। इसका मतलब यह है कि हमने समझने में मुगालता किया। हम समझ रहे हैं एक ही आदम एक ही हवा, नहीं, जमीन में मुख्तलिफ खितों में मुख्तलिफ तरह के आदम जमीन से उगे, उनके साथ हवा भी उगी। अंबातकुम नबाता, याद आ गया वो?
जी आपने फरमाया था, बिल्कुल आपने फरमाया था, बिल्कुल
तो
अब याद
असल
आया।
में देखिए ना, पहाड़ी लोगों की साख्त और है, सहराई लोगों की साख्त और है, मैदानी लोगों की आदतें और मिजाज और हैं। ये फर्क तो नजर आता है ना आपको, ठीक है? इसी तरह अब देखें, स्कीमो जो कि वहां बर्फानी इलाकों में पैदा हुए वहीं रहते हैं, अब उनकी क्या कैफियतें हैं, और अफ्रीका के रहने वाले काले भजन कहां से आ गए? क्या एक ही आदम की औलाद एक चिट्टी हो गई और बर्फ में रहने लगी, दूसरे की काली हो गई और वहां जंगलों में रहने लगी? ये क्या बात हुई भाई? अगर देखे ना, अफ्रीकी को आप वहां टेंड्रा के मैदानों में भेज दें, वहां बर्फ में रहना पड़े उसे, तो वो तो 4 दिन में फौत हो जाएगा। लेकिन इसी तरह एक स्कीमो को उठा के वहां से ले आए आप यहाँ अफ्रीका के जंगलों में बंद कर दें, वो तो गर्मी से ही मर जाएगा, पिघल जाएगा। तो ये बात जरा जहन को बड़ा कर लें कि आदम सिर्फ एक ही, अब तरह तरह के माहौल में आदम पैदा हुआ है जी। हम ये सीधी सी बात मानने के बजाय इसरार किए जा रहे हैं भाई। जब देखे ना, हम कहते हैं अल्लाह ने शेर बनाया, तो एक ही शेर तो नहीं बनाया ना।
अब याद आया सर।
देखे ना, जब अल्लाह ने कहा कि मैंने आम उगाया, तो अल्लाह ने आम उगाया, आम का एक ही पेड़ तो नहीं बनाया कि हाँ जी हम इंतजार करते सदियां के भाई वो दूसरे इलाकों तक वो पहुंचे। गौर करें, ठीक हो गया?
यस सर। सर तो ये जो इलाकों में अफराद क्या होते हैं पुराने जमाने में, जैसे हम पढ़ते भी हैं सुनते भी हैं, जैसे बहुत कद कामत के बड़े बड़े थे, फिर वही बात कहूंगी थोड़ी सी समझने के हवाले से कि आजकल के लोग यानी कद्दो कामत के हवाले से छोटे छोटे हैं, हालांकि वही खाना वही पीना, यानी इससे कोई ताल्लुक रखता है या कोई बात है जो पहले बहुत
जी,
बड़े
असल
बड़े
में इसके पीछे बड़ा राज ये है कि एक बड़ा ग्राफ है, ठीक है? एक ग्राफ पेपर लें आप, उस पे आप
जी
4 हाथी बनाएंगे, उसके बाद जगह नहीं रहेगी। लेकिन अगर आप हाथी का कद छोटा कर दें, साइज छोटा कर दें, तो 8 बना लेंगे। जब आबादी में इजाफा हुआ, तो यहाँ ग्राफ पेपर तो वो मुतय्यन है ना, जमीन की सतह तो मुतय्यन है, तो इसलिए वक्त के साथ साथ वो कदो काम छोटे होते चले गए। इंसानी शऊर में ये एडजस्टमेंट है, उसने खुद को एडजस्ट किया।
क्योंकि हम सुनते हैं सर कि अल्लाह के खजानों में कमी नहीं है, यहाँ
जी
पर
बिल्कुल नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। देखे ना, पहले एक आदम और हवा के लिए खाना पकता बनता था, मिलता था। अब 7.5 अरब से ज्यादा आबादी के पास खाना मिल रहा है कि नहीं, सारे खा रहे हैं कि नहीं?
बेशक बेशक।
तो एक आदमी का या दो आदमियों का या 10, 20, 50, 100 का खाना, और कहाँ 7.5 अरब अफराद का खाना। तो अल्लाह तो वसाइल सबके लिए फराहम कर रहा है। बात हुई थी साइज की, जुस्से की। मैंने कहा कि चूंकि ये बेसिक नेट जो है, जो दुकान का नेटवर्क है, वो मुतय्यन है, जमीन की हदूद मुतय्यन है। तो इसमें जब आबादी ज्यादा होगी किसी चीज की, तो या जाहिर है या उसका क्या करेंगे, किसी दूसरी मखलूक को हटाएंगे, जैसे डायनासोर थे वो खत्म कर दिए, उसकी जगह छोटे जानवर आ गए। ठीक हो गया ना? अब इसी तरह वो बड़े कदो काठ जो हैं, उनके बजाय छोटे कदो काठ चलने शुरू हो गए, क्योंकि ये कुदरती तौर पे इंसानी शऊर इतना स्याणा है कि वो एडजस्ट करता है। ये सालों में नहीं, सदियों में अमल होता है। जी
थैंक यू सो मच सर।
मोस्ट वेलकम। जी जनाब। जी जनाब।
जी सर, मैं सवाल कर।
जी जी इरशाद
सर, ये किताब लोह कलम में लिखा हुआ है कि ज़ात बारी ताला है, और एक बारी ताला का जहन जो है वो इल्मुल वाजिब कहलाता है।
जी जी
सर, ये मुझे थोड़ा सा बता दें सर, इल्मुल कलम, इल्मे वाजिब, लोहे महफूज, सर ये सारी एक ही चीज है।
इल्मुल कलम वो इल्म है जो लोहे महफूज पे लिखता है। लोहे महफूज और हो गई, कलम और हो गया, जहन और हो गया। आप कागज पे लिख रहे हैं, जो कुछ आपने लिखा वो महफूज हो गया, वो एक तहरीर है। उसको लिखने के लिए आपने जो टूल इस्तेमाल किया उसको कलम कहेंगे। लेकिन इल्मुल कलम वो जहन में जो कुछ है जो लिखना है आपने। बात समझ में आई?
अच्छा।
आपने एक अफसाना लिखा, अफसाना जो है वो पूरे उसके खदोखाल किरदार या स्टोरी आपके जहन में है, वो है इल्मुल वाजिब। ठीक है। अब आपने उसको कर्तास पे, कागज पे मुंतकिल किया, तो आपने लफ्ज ब लफ्ज लिखा, एक एक लफ्ज करके उसकी तस्वीर कशी की, तो कलम का इस्तेमाल किया। तो कलम और चीज हुई, कलम वो तवज्जो हुई जिसके जरिए अल्लाह के जहन में जो कुछ मौजूद है वो लोहे महफूज पे मुंतकिल कर दिया गया। अब लोहे महफूज के बाद उस पे अमल, अब किताब आपने पढ़ी के कुकिंग करनी है, ठीक है, फर्ज करें कुकिंग की रेसिपी आप पढ़ रहे हैं। अब आप उस रेसिपी की मकदार कम ज्यादा कर सकते हैं, क्योंकि इख्तियार है आपको। जरूरी तो नहीं कि उसने 6 बंदों के लिए बनाया, आपके घर में 4 बंदे हैं, आप उसकी मिकदारें अकॉर्डिंगली कम करके उसे 4 बंदों के लिए बना लेते हैं। तो ये जो रेसिपी की अब शक्ल बनी, मिकदारों में तायुन कमी बेशी की, ये आपकी लोहे दोयम बन गई।
अच्छा, सही सर।
और ये लोहे दोयम जो है वो लागू हो गई, यानी कि आपने अपनी ये जो उसमें कमी बेशी करके जो रेसिपी में एडजस्टमेंट की थी वो लोहे दोयम कहलाई। अब उसके मुताबिक खाना पका।
जी
ठीक हो गया। या उसमें इजाफा कर लिया, फर्ज करें वहां 6 बंदों का दिया हुआ, आपको 12 बंदों का चाहिए, आपने 12 बंदों के लिए रेसिपी में अकॉर्डिंगली चेंजेस कर ली।
जी सर,
बात समझ में आ गई?
जी सर, बहुत अच्छे से समझाया।
जी
आसान कर दिया सर, समझ ही नहीं आ रहा था कि इसमें वाजिब कौन है, इल्मुल कलम कौन है।
बस
अच्छा,
वो जी
सर एक सवाल, कुरान में इल्मुल कलम है और एक हरूफ मुकत्तात का इल्म है, दो इल्म है।
जी जी
सर,
हरूफ मुकत्तात जो हैं इसको समझ लें, ये शॉर्ट फॉर्म है। जैसे आप अंग्रेजी में इस्तेमाल करते हैं ना यू एन ओ,
जी
अब क्या कहते हैं जब हम यू एन ओ सुनते हैं तो हमारे जेन में पूरा क्या आता है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन।
जी सर,
इसी तरह अलिफ लाम मीम कि तशरीह हजूर कलंदर बाब औलिया ने ये फरमाई है कि ये खालिक और मखलूक के दरमियान रब्त का नाम है, यानी अलिफ लाम मीम खालिक और मखलूक के दरमियान रब्त है। तो ये हरूफ मुकत्यात शॉर्ट फॉर्म हो गए, एब्रीवेशन हो गए किसी जुमले के। अब हजूर सलाम के दौर में किसी ने एतराज नहीं किया कि जी ये क्या है, मुख्तलिफ सूरतों के शुरू में ये हरूफ क्या माने रखते हैं।
जी
है कि उन्हें पता था कि ये एब्रीवेशन है। हमने और आपने पर्दा डाल दिया, हमारे क्योंकि जहन थके हुए हैं, हम सोचना चाहते नहीं, गौर व फिक्र करना नहीं चाहते, लिहाजा हमने कभी यूएनओ की डेफिनेशन पूछी नहीं कि भाई यूएनओ क्या है, अब डब्ल्यूएचओ क्या है, ये सब क्या है, एब्रीवेशन हैं। ठीक हो गया ना। अब चूंकि आपने सुना हुआ है, पढ़ा हुआ है, मालूम है, या डिक्शनरी देख ली या वहां से पता किया कि भी इसकी एब्रीवेशन ये किस किस लफ्ज की एब्रीवेशन है, तो आपको मालूम हो गया। हमने कभी कुरान को इस हवाले से सोचा ही नहीं, तो हमें इन हरूफ मुकत्यात जो हैं, जो शॉर्ट फॉर्म हैं, इनकी पता ही नहीं चला कि असल में ये लफ्ज किस तरफ इशारा कर रहा है। ठीक हो गया ना।
सर इसमें जैसे कुछ हरूफ मुकत्यात हैं उनको कहते हैं कि हुजूर के नाम है, यासीन, ताहा,
बेशक 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 जी।
भी नाम
नहीं नहीं ये देखें, साफ तो बताया कि अलिफ लाम मीम हजूर कलंदर बाब औलिया ने इसकी शरह ये फरमाई है कि खालिक और मखलूक के दरमियान रब्त राबिता। अब बताइए, अब देखें ना, आपने बात सुनी, अब इसको समझने के लिए जो वक्फा चाहिए, जो वक्त चाहिए, जितनी जहन की एप्लीकेशन चाहिए, जब जहन अप्लाई करेंगे तो समझ आएगी ना कि इसमें, अब मैं कहूं कि अलिफ अल्लाह है, मीम मखलूक है, लाम जो है रब्त है, कि अल्लाह और मखलूक का रब्त जो है ये अलिफ लाम मीम हो गया, यानी खालिक और मखलूक के दरमियानी रब्त के बारे में कह रहे हैं जालिकल किताबो, ये यानी अलिफ लाम मीम वो सांचा है जिसमें कोई आड़ा तिरछापन नहीं। अब असल जुमला ये बन गया ना।
जी सर,
हम जालिका का तर्जमा कर रहे हैं ये किताब, अब ये किताब तो नहीं हो सकता ना, जालिका वो किताब सांचा। तो देखें जब आपने ये दो लफ्ज ठीक किए तो देखें अब अलिफ लाम मीम का मफहूम वाज़े हो गया।
जी सर,
तो मजीद लौह कलम पढ़ें तो इंशाल्लाह बाकी नामों पे भी हम गौर करेंगे, तो आप भी कीजिए बाकी हरूफ मुकत्यात पे, तो उस तरह उसके भी मीनिंग समझ आ जाएंगे।
जी सर, थैंक यू सर,
वेलकम।
ये भी सर आपने समझाया।
बस ये हजूर कलंदर बाब औलिया ने कहा हुआ है, वो किताब अगर हम पढ़ लेते तवज्जो से तो ये बातें वहां लिखी हुई है। जी और कोई सवाल? जी
जी सर, मेरा सवाल
जी इरशाद।
अस्सलाम वालेकुम सर।
जी वालेकुम अस्सलाम।
सर हमने जैसे कुरान में भी ये आयत आई हुई है कि आदम को जमीन में से उगाया, सब तो ये तो डायरेक्ट वाली बात हो गई ना, मतलब एक जात ने अपना एक जसामत डायरेक्टली वहां से निकाल ली।
जी।
तो सर उसके बाद अब ये जो रिप्रोडक्शन का जो सिस्टम अब ऐसे चल रहा है, तो सर इसकी क्या वजह हुई सर कि वहां पे पहले डायरेक्ट हुआ, अब यहाँ पे इनडायरेक्टली?
नहीं देखो, बात ये है कि पहले अल्लाह ने एक मुर्गा और मुर्गी बनाया।
जी सर,
अब उस मुर्गे ने अपनी नौ को बरकरार रखने के लिए ये रिप्रोडक्शन का सिस्टम ऑप्ट किया। ये नौ जो है ये अपने आप को रिप्रोड्यूस करती है, रिपीट करती है
जी, ऐसा ही है सर।
बस तो ये नौ ही दर्जे से नीचे उतरेंगे तो फिर आपको रिप्रोडक्शन का सामना है। नौ ही नहीं रिप्रोड्यूस हो रही, एक नौ से दूसरी नौ तो नहीं रिप्रोड्यूस हो रही,
नहीं हो रही बिल्कुल।
हर नौ अपनी जगह एक नौ है,
बिल्कुल है।
वो नौ जो है वो खुद को रिप्रोड्यूस करने के लिए अल्लाह ने उसमें ये सिस्टम रखा है। सॉरी अनुमान, हर नौ में रिप्रोडक्शन का सिस्टम इनकॉर्पोरेट किया गया। ये अल्लाह के सिस्टम का हिस्सा है जिसकी सिफत है तखलीक, रहमान और रहीमी। रहमान और रहीम वाली ये सिफत जो है ये अनवा को मुंतकिल की गई या उनको वो इसे इस्तेमाल करते।
सही, ओके सर, सही हो गया,
ठीक हो गया
जी। जी सर जी,
माशाल्लाह,
थैंक यू सर,
वेलकम
सर। मेरा हो गया,
चले माशाल्लाह जी। और किसी ने पूछना है कुछ?
सर यहाँ पे ना थोड़ा सा नेट का इशू है क्योंकि लाइट नहीं है और
सेम इज
हियर, भी नहीं चल रहा कैसे।
मैं भी आपसे डेटा पे बात कर रहा हूँ
जी सर, तो वो इसलिए आज आए भी नहीं है काफी लोग ना।
कोई बात नहीं, तो फिर इतने ही काफी है।
नहीं सर, एक सवाल मेरा इजराक के बारे में,
इरशाद
इजराक गहरा होने के बाद निगाह बन जाता है
सर। अच्छा, और सर ये जो वमा इदराक अल-क़ारिया है और मा इदराक लैलतुल क़द्र में भी आते हैं सर, तो ये इदराक और उस इदराक में क्या फर्क है या क्या वो मासलत है? मासलत नहीं है, जब ये निगाह देखे ना, इदराक किसे कहते हैं? समझ को कहते हैं, फहम को कहते हैं।
सर
आपको किसी चीज की कितनी समझ है इसका नाम इदराक है। जब वो समझ गहरी होती है, मैं आपको एक मिसाल दूं
जी सर,
मैं एक लफ्ज बोलने लगा हूं, लीमू
जी,
क्या हुआ? लीमू की तस्वीर नजर के सामने आई, क्योंकि हम लीमू को जानते हैं, लीमू को पहचानते हैं, लीमू से वाकिफ हैं, लिहाजा लीमू की तस्वीर आई
जी।
तो क्या हुआ? आपकी बातनी निगाह ने लीमू को देखा। अब मैं लफ्ज कबूतर बोलूं तो आपके जेहन में काफ बे वाव ते रे कबूतर नहीं आया, आपके जेहन में एक परिंदा आया जो कबूतर है। अब वो बैठा हुआ है या उड़ता हुआ है, ये आपके जेहन का तखयल का कमाल है। इदराक कहते हैं समझ को। जब ये आपकी समझ गहरी हुई, अब आप बेध्यानी से लफ्ज सुने कबूतर, कभी जेहन में तस्वीर नहीं आएगी
जी सर।
लेकिन अगर आपने इसी लफ्ज को कबूतर को ध्यान से सुना और तवज्जो से महसूस किया तो क्या हुआ? पूरा जीता जागता कबूतर आपके जेहन में बैठा हुआ दिख रहा है
जी सर, ऐसा ही है।
बस इसी को कहते हैं इदराक का गहरा होने पे वो निगाह बन जाता है। यानी जब समझ में गहराई पैदा होगी तो वो निगाह काम करेगी, यानी वो महसूस होगा। क्योंकि आपने पीछे पढ़ा है ना लौह कलम में कि इंसान जो है वो सिर्फ एहसास का नाम है।
बिल्कुल,
तो एहसास के मुख्तलिफ दर्जे हैं काम करने के, ये साइंस पढ़ाई जा रही है आपको कि एहसास के दर्जे हैं, एहसास के दर्जे हैं, एहसास के दर्जे हैं। फिकर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ी ब सीढ़ी नीचे उतरती है और फिर आखिरी हद यानी के लम्स की दर्जे पे पहुंचने के बाद वो वापस पलटती है। ये एक साइकिल चल रहा है, इसकी मश्क जो है वो आप करते जाएंगे तो आपको अपने इन चारों दर्जात का वहमा ख्याल तसव्वुर और एहसास का के बारे में जाहिर है आपके मुशाहिदे में बेहतरी आती चली जाएगी। जब आदमी किसी चीज़ को एहसास के दर्जे पे फील करता है या उसे तसव्वुर में फील करता है या ख्याल में महसूस करने लगता है, ये अपने एहसास को आपने अपलिफ्ट करना है। एहसास मादी जोन में है एक दर्जा, इसी को जब आप ख्याल के जोन में फील करना सीख लेते हैं तो गोया ये आपके जहन की सकत में इजाफा हो गया। ये सारी मशकें जो कराई जाती हैं उनके पीछे बेसिकली यही राज है।
अच्छा सर, अभी एक जो अब्बा ने मराकबा बताया वो काला दायरा है, स्याह दायरा है, उसको बगैर पलक झपके देखना है।
जी हाँ
सर, वो यही सकत में इजाफे के लिए कराया
जा
रहा है।
वो बिल्कुल जी हाँ,
गहराई पैदा होती
जी है। जी, असल में इससे क्या होता है कि आपके अंदर विल पावर बढ़ती है। देखे ना, जब आप पलक को नहीं झपकने देते तो अपने साथ कुश्ती लड़नी पड़ रही है ना। जब आप वर्जिश करते हैं तो क्या करते हैं, पुशअप्स करते हैं। पुश करने का क्या मतलब है कि आप हाथों को जोर देते हैं, उससे क्या होता है आपके कंधों की ताकत बढ़ती है, आपका स्टेमिना बढ़ता है। इसी तरह जब ये मशक की जाती है कि पलक ना झपके, बेला ना हिले, तो आपकी विल पावर बढ़ती है, फिर आप कुव्वते इरादी से काम लेकर जो चाहते हैं वो देख सकते हैं। ठीक हो गया
जी सर, इतराक में आने लगी सर चीजें,
अल्लाह का शुक्र।
सर यही जरा सी शिद्दत पैदा हो जाती है तो यही गुफ्तगु रंगारंग लिबासों में जलवागर होती है।
बिल्कुल, यानी के अब रंगीनियों का दौर, मतलब है कि वो फिकर जो है पहले वराए बेरंगी में थी, फिर बेरंगी बनी, फिर बेरंगी से यकरंगी बनी, फिर इसी को रंगीनियों में। हाँ, अब हमने रंगों को यानी महसूसात, रंग का मतलब है एहसास, एहसासात यानी जब हमें कोई चीज महसूस होने लगी तो गोया हमने रंग देख लिए। ठीक हो गया
जी सर, लोगों के भी रंग होते हैं, हर इंसान का एक अपना रंग होता है।
बेशक, कहते हैं ना कि ये मेरा बच्चा जो है इस पे दोस्तों का रंग चढ़ा हुआ है। ये खवातीन अक्सर कहती हैं भी मेरे शौहर पे अपनी अम्मा का रंग चढ़ा हुआ है।
जी
वो रंग से मुराद क्या है कि उन्होंने उसका असर कबूल किया हुआ। जी हाँ, अल्लाह का कोई रंग होता नहीं है लेकिन चढ़ता भी है और दिखता भी है। सिबगतुल्लाह है वह मन आहसान सिबगतुल्लाह, अल्लाह का रंग, और अल्लाह के रंग से बेहतर किसका रंग है। अल्लाह कह रहा है मेरे रंग में रंगे जाओ, यानी अल्लाह ये रंग यानी असर लेने वाली बात कह रहा है। यहाँ पे सिबगतुल्लाह का मतलब असर लेना, यहाँ पे ये वो पेंटर वाले रंग नहीं है जो पेंट करते हैं तस्वीर।
सर मेरे जहन में इसी तरह के वही कलर ही आए थे वैसे।
तो मैंने इसीलिए वजाहत अर्ज कर दी ना कि एक होता है असर लेना। अब देखे ना, सारे अजीमियों पे आपको अब्बा का रंग दिखता है, यानी अब्बा की सोच का असर लिया उन्होंने, जितना भी लिया, किसी ने कम लिया, किसी ने ज्यादा लिया, लिया सब ने।
जी जी सर,
ठीक हो गया ना
जी सर। थैंक यू सर, मेरे सवाल हो गए सर।
माशाल्लाह, चलें फिर आज की निशेष इतनी काफी है।
सर हम आपसे सवाल आप
हैं जी
अभी, सर आप हमें और कुछ बताएं। मैंने तो ये दो स्टडी की थी लॉ कलम वाली।
माशाल्लाह जी, बस आपने जो पूछा वो मैंने अर्ज कर दिया। मैं क्या अर्ज करूं, क्योंकि सारी किताबें माशाल्लाह आप सारे ही पढ़ रहे हैं, तो जो जो बात कहीं अटकती है वहां हम आपस में शेयर कर लेते हैं।
जी सर। शाजिया कोई सवाल है? मेरा तो हो गया था यार, बाकी कोई और कर नहीं रहा है शायद।
चले ठीक है फिर, आज इतने ही काफी है।
जी सर आज
कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये चलता है। जिंदगी रही तो होते रहेंगे सवाल भी, जवाब भी आते रहेंगे। जी अपना ख्याल रखिए।
थैंक यू सो मच सर।
अल्लाह हाफिज।